हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 14। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारुण बिम्बफलधरोष्ठा पुरेन्द्रसुन्दरमुखा हरविन्दनेत्रा कृष्णातरं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दीयेस्तवी वेदेसाङ्गपत्क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न वेदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यनन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद चौथा अध्याय श्लोक नंबर 14। कृपया मेरे साथ साथ इन पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत उवाच द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरि द्वापरि समनु प्राप्ति तृतीये युगपर्ययि जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरि द्वापरि समनु प्राप्ति तृतीये युगपर्ययि जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरि द्वापरि समनु प्राप्ति तृतीये युगपर्ययि जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरि द्वापरि समनु प्राप्ति तृतीये युगपर्ययि जातः पराशर योगी जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरि सूत उवाच द्वापरि समनो प्राप्ति तृतीये युगपर्ययि जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरि। शब्दों का अर्थ देखिए। सूत उवाच अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा द्वापरि समनुप्राप्ति, द्वापरि अर्थात द्वापर युग में समनुप्राप्ति यानी आविर्भाव होने पर, तृतीय युग पर्यये, तृतीय अर्थात तृतीय यानी तीसरा युग यानी युग, पर्यये के स्थान पर, जातः पराशराद योगी, जातः अर्थात प्रकट हुए पराशराद यानी पराशर मुनि से योगी यानी जो परम साधु हैं, वासव्याम कलया हरे, वासव्याम अर्थात वसु की पुत्री के गर्भ में, कलया पूर्णांश में, हरे अर्थात भगवान के। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा एक योगी अर्थात व्यास देव ने जन्म लिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चतुर्युगों का एक काल क्रम है सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अतिव्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले पड़ गया था। उस विशेष युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी अवतार ग्रहण किया था और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। ऋषि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता पराशर मुनि थे। व्यास देव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग तीन कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यास देव उस युग की तृतीय संध्या में उत्पन्न हुए थे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरां यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। परम सौभाग्य है कि आज हम सूत गोस्वामी के मुखारविंद से उस भागवत कथा के प्रारंभ का प्रारंभ होने वाला है उसको श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि अभी शौनक मुनि इतने प्रश्न कर चुके हैं और उन्होंने तीसरे श्लोक में 1.4.3 में क्या कहा, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णा कृतवान् संहिता मुनि। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, यानी कि वो कौन सा युग था आप बताइए कि किस युग में तथा स्थाने वा केन हेतुवा वो कौन सा स्थान था, कुतः संचोदित है कृष्ण द्वैपायन को किन्होंने प्रेरणा दी थी, कृतवान संहिता मुनि, जिसके कारण उन मुनि ने यह जो श्रीमद् भागवतम है उसका संकलन किया, तो ऐसा क्या हुआ था, वो कौन सा युग था और वो कौन सा स्थान था जिस पर कृष्ण अर्थात द्वैपायन वेद व्यास जी के विषय में पहला प्रश्न था, तो उन्हीं वेद व्यास जी के विषय में बताते हुए सूत गोस्वामी कह रहे हैं, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वही प्रथम वक्ता है श्रीमद् भागवत महापुराण के और उन्होंने ही संकलन किया है, तो उनका एक बहुत ही विचित्र जो प्राकट्य था। वास्तव में यहाँ पर बताया गया कलया हरे, कलया अर्थात वो भगवान के पूर्ण अंश थे, हरे यानी भगवान के, और वो कब आए थे तो यहाँ पर बता रहे हैं द्वापुरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यरे। यहाँ पर एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं कि देखो यहाँ श्री प्रभुपाद ने क्या बताया कि चतुर्युगों का एक कालक्रम है, क्या है, पहले सत्युग आता है, फिर द्वापुर युग आता है, फिर त्रेता युग आता है और फिर कलयुग आता है। ठीक है, ये संख्या नीचे देखो श्री प्रभुपाद ने बताया ना, ये सीरीज ऐसे है, कालक्रम क्या है, सत्यु होगा फिर द्वापुर होगा फिर त्रेता होगा फिर कलयुग का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, द्वापुरे समनो प्राप्ति तृतीय युग पर्यरे, कि युग जो जो युग तीसरे माने तीसरे नंबर पे आने वाला था वो दूसरे नंबर पे आ गया और जो दूसरे नंबर पे आने वाला था वो तीसरे नंबर पे आ गया, ऐसे वैसे कालक्रम क्या है, पहले सत्ययुग होगा द्वापर युग होगा त्रेता युग होगा और कलयुग। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोलते कभी कभी ऐसा होता है अति व्यापन हो जाता है, यानी कि उसकी जगह वो आ जाता है दूसरी जगह दूसरा आ जाता है, जैसे वो क्या कब हुआ था भगवान श्रील प्रभुपाद ने बोला कभी कभी ऐसा होता है, तो जो वैवस्वत मनु यानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं और अभी कौन सा चल रहा है, 7वां मनु, उसका नाम क्या है, वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के राज्य में चतुर्युगों की 28वां चक्र। अब देखो एक मनु के आयु में 71 चतुर्युग होते हैं, तो जो 28वां चतुर्युग था ना उसमें ऐसा हुआ, चतुर्युग में क्या होना चाहिए था, सत्युग फिर द्वापर फिर त्रेता फिर कलयुग, लेकिन इसमें क्या हुआ अति व्यापन, यानी कि पहले द्वापुर की जगह पहले त्रेता आ गया और फिर त्रेता की जगह बाद में जो आना था वो द्वापुर आ गया। और ये क्यों हुआ था इसका एक बहुत ही सुंदर इतिहास है कि सत्युग में एक घटना घटी थी कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जब ये कथा मैंने पहले भी बताई थी, जब इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखा तो इंद्र के हृदय में कामेच्छा उत्पन्न हुई और वो मुर्गा बनकर सुबह सोने से पहले ही अंधेरी रात में ही मुर्गा बनकर आवाज देने लगा और गौतम ऋषि ने समझा सुबह हो गई है और वो स्नान करने के लिए चला गया और इंद्र जो है वो भेष बदल कर गौतम ऋषि का भेष धार कर अहिल्या के पास गया और संभोग किया, जिसके कारण जब मुनि आया वापस तो उसने अहिल्या को देख लिया और फिर इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारे पूरे शरीर पे हजारों आंखें बन जाएंगी और अहिल्या को श्राप दिया कि आप पत्थर की बन जाओ। तो उस समय इंद्र को जो अब वास्तव में क्या होता है, यदि कोई शुद्ध भक्त होता है ना, भगवान का भक्त, उसके साथ हम किसी भी तरह से संपर्क में आते हैं तो हमारा कल्याण होता है। इसलिए कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र है। अगर आप साधु का संग करोगे, भले किसी भी तरीके से करो, अगर आपने साधु का संग किया है तो कल्याण होने वाला है आपका। भले साधु श्राप भी दे देते ना, उसमें भी कल्याण होता है हमारा। तो साधुओं के साथ रहना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा असंग असत संग त्याग, जो असत है, जो भगवान के भक्त नहीं, उनका त्याग करो संग, क्योंकि उससे कभी आपका कल्याण नहीं होगा। तो हुआ यूं कि इंद्र के शरीर पे नेत्र ही नेत्र उत्पन्न हो गए। और जब इंद्र जब भगवान की लीला होती है तो इंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं कि गौतम ऋषि ने मुझे श्राप दिया नहीं है, ये तो वरदान है कि मैं एक एक दृष्टि से तो भगवान की लीलाएं, भगवान की इतनी सुंदरता को देखना संभव ही नहीं। इसलिए मुझे हजारों, मेरे पास आंखें हैं, मैं इनको भगवान के दर्शन करता हूँ, भगवान की लीलाओं को दर्शन करता हूँ, मुझे बहुत संतुष्टि होती है। तो ये इंद्र को ऋषि का श्राप भी वरदान के जैसा लगे। लेकिन अहल्या का क्या हुआ? अहल्या ने जब ये सुना कि मैं पत्थर की बन गई, तो ऋषि ने सोचा, ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान श्री राम आएंगे और आपका उद्धार होगा। तो अहल्या बहुत रोने लगी कि भगवान जब श्री राम के रूप में आएंगे और उनकी पत्नी का हरण हो जाएगा, भगवान श्री राम के रूप में आएंगे और जब वो जा रहे होंगे विवाह करने के लिए, तो रास्ते में मतलब उनसे मिलेंगे। तो अहल्या ने कहा कि कितना सारा समय है, अभी तो द्वापर वो मतलब अभी तो है ना सत्युग चल रहा है, फिर द्वापर युग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर मेरा उद्धार होगा। पूरा एक युग तक मैं ही पत्थर की बने रहूंगी। बहुत उसको रोना आ रहा था कि इतना मेरा इतना अपराध नहीं था जितनी बड़ी मुझे सजा मिल रही है, क्योंकि पूरा एक युग में ऐसे पत्थर की बनी रहूंगी। तो फिर गौतम मुनि ने सोचा कि वाकई ये समय बहुत बड़ा है, पूरा एक युग है ना। तो फिर भगवान से प्रार्थना की कि मेरे मुख से तो निकल गया कि इनका त्रेता युग में इनका उद्धार होगा, अब आप कुछ करिए, त्रेता युग को ही जल्दी लेकर आइए। मेरा तो अभी मुनि ने बोल दिया वो चेंज नहीं हो सकता है, तो लेकिन भगवान तो अपना सिद्धांत चेंज कर सकते ना, भगवान के ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, त्रेता पहले आ जाएगा, द्वापर बाद में लेकर आ जाएंगे। तो फिर और द्वापर में भगवान को स्वयं आना था, तो इसलिए त्रेता युग में ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करनी पड़ी कि ना भगवान के आने की लालसा बढ़े सबके हृदय में। जैसे जब दंडकारण्य में सारे ऋषि मुनियों को भगवान श्री राम जब उनको देखते, तो फिर उनकी ऐसी हृदय के अंदर लालसा हो जाती, भगवान श्री राम इतने सुंदर लगते और ऋषि इतने तपस्वी, और कहते भगवान को कि हम अपने योग साधना से स्त्री बन जाते हैं, हमने साधना की है आपका प्रेम प्राप्त करने के लिए और हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं, हम अभी स्त्रियां बन जाएंगे और आप हमारा वरण कीजिए। परंतु श्री राम ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इस शरीर में मैं एक पत्नी व्रत लिया है, मैं सिर्फ एक ही शादी की है, एक ही विवाह किया है, मैं एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता। आप लोगों को यदि मुझसे विवाह करना है तो फिर नेक्स्ट द्वापर में आइएगा अब, और इसके अतिरिक्त, क्योंकि अब इस युग में क्या होता है, जो जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है तो उसके फौरन बाद कलयुग आना है, जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु के भगवान श्री कृष्ण तो सिद्धांत बता के चले जाएंगे, प्रैक्टिकल करने के लिए उनको राधा कृष्ण मिलत स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना होगा। तो ये भगवान ने अपने सुविधा के लिए कुछ विशेष प्रयोजन के कारण इस युग के अंदर, युगों की जो ये श्रृंखला काल क्रम है ना, उसको चेंज कर लिया था और इस तरह से पहले त्रेता युग आया, उसके बाद द्वापर युग आया, फिर चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए। तो ये भगवान की इच्छा से हुआ। और आगे कहा, श्री प्रभुपाद जी ने कहा, ऋषि की माता सत्यवती वसु यानी मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता पराशर मुनि थे। अब वेद व्यास जी के जन्म का इतिहास बताते हुए कहते हैं क्या, जातः पराशराध्यो की वासव्यां कलया हरे। जातः मतलब प्रकट हुए, पराशराधि योगी, ये जो पराशर मुनि थे कोई साधारण नहीं थे। योगी का मतलब लिखा हुआ है परम साधु, बहुत बड़े महामुनि थे। और वासव्याम यानी वसु की पुत्री के गर्भ से, वो जो मछुआरा था उनकी पुत्री, उनका नाम क्या था, सत्यवती। सत्यवती और पराशर मुनि उनके संयोग से किसका जन्म हुआ, वेदव्यास का। जो कौन थे, कलया हरे, भगवान के पूर्ण अंश, हरे अर्थात भगवान के पूर्ण अंश। तो इस श्लोक में दो चीजें समझने की हैं। एक तो रूल्स जो हैं, जैसे रूल था, क्या रूल था, कालक्रम क्या था, सत्युग, सत्युग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, उसके बाद कलयुग, ये आना था। परंतु सत्युग के बाद त्रेता, इसका मतलब ये हुआ कि ये भगवान ने जिस युग में भगवान को आना था, वो अपनी भगवान के लिए कोई भी रूल्स नहीं होते हैं, कोई भी रूल्स कृष्ण को नहीं बांध सकते हैं। ये भगवान की इच्छा है, वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। हर वो प्रिंसिपल जो किसी सिविलाइज व्यक्ति के लिए, खासतौर पर भक्तों के लिए पालन करना आवश्यक है, अगर कृष्ण की इच्छा हो तो उन समस्त प्रिंसिपल्स को तोड़ सकते हैं। जैसे नशा क्यों अपराध है, क्योंकि ऐसा कृष्ण कहते हैं, वो कृष्ण की इच्छा के अनुसार नहीं है। पर पुरुष संग और पर स्त्री संग वो इसलिए अपराध है क्योंकि भगवान का ऐसा आदेश है। हर वो कार्य जो भगवान की खुशी के लिए नहीं किया जाता है वो अपराध है, भले भौतिक दृष्टि से वो अपराध नहीं दिखता है। और हर वो कार्य जो भौतिक दृष्टि से बहुत पवित्र है, लेकिन यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो वो अपराध है। और हर वो कार्य जो भगवान की खुशी के लिए नहीं किया जाता है, वो बंधन का कारण बनेगा। अगर कृष्ण बोलते हैं कि नो मीट ईटिंग, आपको मांसाहार नहीं करना है, तो अगर उसके बावजूद भी हम करते हैं, यानी कि मुझे भगवान कहते भद्रम पुष्पम फलम तोयम, तो कोई लोग बोलते हैं कि क्या वेजिटेबल्स में जीव होता है ना, वेजिटेबल्स में भी, फिर क्यों वेजिटेबल्स खा सकते हैं हम और है ना ये नॉन वेजिटेरियन को मना करते हैं। तो ये अपराध इसलिए है क्योंकि कृष्ण ऐसा चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रणश्यते, और तुम जो भी मुझे अर्पण करते हो वही खा सकते हो। अगर भगवान यही चीज अगर नॉनवेज के लिए कहते तो वो अपराध नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं, ये मेरे बच्चे आप इनकी हत्या मत करो, ये जितने भी जीव यहाँ पर हैं उनकी हत्या मत करो, लेकिन भगवान ने ये बोला है कि आप मुझे ना ये वेजिटेबल्स और फल फ्रूट्स आप मुझे खिला सकते हो, तो ये भगवान का आदेश है। वास्तव में अपराध सिर्फ वही होता है जो भगवान की इच्छा नहीं हो। वास्तविक बात तो ये है कि जो कृष्ण की इच्छा है केवल वही कार्य करना है, और जो कृष्ण की इच्छा नहीं है वो कार्य नहीं करना है। अर्थात अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य है उनको करना है, और जो कार्य भगवान को अप्रसन्न करते हैं या भगवान का आदेश नहीं है उनको नहीं करना है। यही प्रकृति का नियम है, यही लॉ ऑफ नेचर है। और जैसे ही हम भगवान कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध जाएंगे, समझे प्रकृति के नियमों का विरोध हो गया, और इसी से हमारे कर्मों का बंधन बनेगा। परंतु भगवान पर प्रकृति के नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। परंतु भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता 7.13, त्रिभिर् गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीनों गुणों अर्थात सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त या सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवान जब भी कोई अवतार लेते हैं उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। जब उसी राम के शरीर में प्रकट हुए वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हर मर्यादा का पालन किया, अपने माता पिता के आदेश को पाला, बहुत ही हम्बल थे, गुरु महाराज गुरुओं का आदेश मानते थे, एक पत्नी व्रत, राजा का कर्तव्य सब कुछ उन्होंने पालन किया। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार में प्रकट हुए तो अपनी लीला से दिखा दिया इस संसार को दैट आई एम द पर्सन, आई एम द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड हेड, मैं जो कार्य करूं वही परफेक्ट है क्योंकि मैं ही परम सत्य हूं, जो मैं करता हूं वही मॉरेलिटी है क्योंकि ये मेरी इच्छा से होता है। मॉरेलिटी नैतिकता यानी अच्छा कार्य, प्रिंसिपल क्या है, मॉरेलिटी अर्थात भगवान की इच्छा और इमोरेलिटी अर्थात जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो, अर्थात अपराध वो नहीं है जो हम अपनी बुद्धि को यूज करके करते हैं। अपराध वही है, सबसे बड़ा अपराध क्या है, यदि भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हो तो वो अपराध है। अगर कृष्ण की इच्छा चोरी करने की हो रही है, वास्तव में चोरी करना बुरा कार्य है, परंतु यदि कृष्ण की इच्छा चोरी करने की हो रही है, कृष्ण को प्रसन्नता हो रही है चोरी करने से यदि, तो ये सबसे बड़ी मॉरेलिटी माने सबसे बड़ा ये नैतिकता यही है क्योंकि कृष्ण को इससे प्रसन्नता हो रही है, कृष्ण को सुख मिल रहा है, कृष्ण को आनंद प्राप्त हो रहा है। तो जिस कार्य से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं सबसे बड़ा पुण्य कर्म वही है, सबसे बड़ी नैतिकता वही है। यदि कृष्ण ये चाहते हैं कि वो यंगर्स गोपियां अंधेरी रात में जंगल में आए मुझसे अकेले मिलने के लिए, कृष्ण को प्रसन्नता हो रही है, तो यही सबसे बड़ा सत्य है। परम सत्य को प्रसन्न करना ये सबसे बड़ी नैतिकता है। जब कृष्ण से उनकी मैया पूछती है, कृष्ण तुमने मक्खन खाया, तो कृष्ण कहेंगे नहीं मैया मैंने मक्खन नहीं खाया, वास्तव में तो ये झूठ है, परंतु क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है क्योंकि कृष्ण परम सत्य है। कृष्ण जो कार्य करते हैं वही परम सत्य है, कृष्ण की जो इच्छा होती है वही परम सत्य है। इस संसार में वो जीव जो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम ऑनेस्ट हैं, हम बहुत ज्यादा नैतिक हैं, उनकी नैतिकता उनकी ईमानदारी सब धोखा है। चाहे वो कितने ही ज्यादा सिविलाइज क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही ज्यादा प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले, रूल्स एंड रेगुलेशन से चलने वाले कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं तो वो ईमानदार नहीं हो सकते, तो वो नैतिक नहीं हो सकते। कृष्ण की शरण में आने का मतलब है कृष्ण की इच्छा को पूरा करो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, उत्तिष्ठ युद्धाय कृतनिश्चया, अर्जुन तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। हालांकि युद्ध सबसे बड़ा गंभीर कार्य है जिसमें इतनी सारी हत्याएं होने वाली हैं, परंतु यदि यह युद्ध कृष्ण की इच्छा से हो रहा है तो फिर यह सबसे बड़ा पुण्य है। अगर कृष्ण की इच्छा है कि करण को छल से मारा जाए और अर्जुन, हालांकि छल से अर्जुन को नहीं मारना चाहिए, लेकिन यदि वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है तो इसमें कोई अपराध नहीं क्योंकि कृष्ण की इच्छा, कोई कार्य यदि कृष्ण की इच्छा से किया जाता है तो उसमें कभी अपराध लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि कृष्ण परम सत्य है, उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। और भगवान क्या कहते हैं, तुम मेरी शरण में आ जाओ। शरण में आने का क्या मतलब है, मेरी आज्ञा के अनुसार मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करो। तो क्या करूंगा, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे समस्त पापों को हर लूंगा, मैं तुम्हारे समस्त पापों का क्षमन कर दूंगा। जब अपराध नष्ट हो जाएंगे भगवान की शरण में आने के बाद तो फिर अपराध लगेगा कैसे। तो यदि हमें इतने सारे वेद अध्ययन करने के बाद अगर कोई वेद अध्ययन करता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ समझता है, परंतु यदि वेदों का उद्देश्य नहीं समझता है, जो कि 15.15 में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो है उसमें समस्त वेदों का निचोड़। अब देखो कुछ भक्त होते ऐसे, वास्तव में क्या भक्तों को वेदों की ये अलंकारमयी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं होता। भगवान भी कहते हैं त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीयो भवार्जुन। अर्जुन, ये जो वेदों के अंदर अलंकारमयी लैंग्वेज है ना, जो तीन गुणों से निर्धारित की गई है, सत्व गुण, रजोगुण, इन तीनों गुणों से आपको ऊपर उठना है। इन सब के इसमें केतव है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे काम की नहीं है। बहुत धोखा है जीव को या शरीर से, कि इस शरीर को कैसे सुखी रखा जाए, इस शरीर में कैसे प्रकृति की जाए, ये सब धोखे वाली बातें बताई गई हैं। लेकिन ये जो भागवत महापुराण है इसमें क्या कहा, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सता। कि जो ये भागवत धर्म है वो निर्मत्सर जो जीव होते हैं, जो संत हैं, उनके लिए, क्योंकि इसके अंदर कोई केतव नहीं है। तो भले ही किसी को वैदिक नॉलेज प्राप्त करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाए, धार्मिक सिद्धांत पता चल जाए, लेकिन यदि वो इस बात को नहीं समझता है, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो, समस्त वेदों का रचयिता भी मैं हूँ, समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं हूँ, और समस्त वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ। केवल वेदों को जानने का मकसद क्या है, कि भगवान की इच्छा के अनुसार जीना। इसीलिए श्री प्रभुपाल जी को कहा जाता है भक्ति वेदांत, यानी वेदों का अंत भक्ति में आता है। वेद जो है उनका निष्कर्ष क्या है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो यहाँ पर जो वेद व्यास जी के अवतार रहने की बात लिखी गई है कि वो एक मछुआरा जिसका नाम वसु था, उनकी पुत्री सत्यवती उनके साथ नाव में बैठे थे पराशर मुनि, और वहीं पर वेद व्यास जी का अवतार हुआ। तो बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ये सुनकर कि सत्यवती और पराशर मुनि, यानी कि इस तरह से संभोग होना, तो हृदय के अंदर कुछ ऐसे ऐसे डाउट्स आ जाते हैं। परंतु वास्तव में हमें ये जो भौतिक इस चीज को, जो भी भगवान का अवतार होता है उसकी जो लीला होती है, उसको हमें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना है। वास्तव में पराशर मुनि के विषय में क्या लिखा है यहाँ पर कि सह योगी, यानी वो योगी थे, परम साधु थे, महामुनि थे, मुक्त आत्मा थे। तो यहाँ पर क्या है, भगवान को वेद व्यास जी के रूप में अवतार लेना था, यानी भगवान को वेद व्यास जी का अवतार लेना था जो वो चाहते हैं, यानी भगवान की इच्छा से। ऐसा नहीं है एक्सीडेंटली ऐसा हो गया और फिर है ना वेद व्यास जी का जन्म हो गया, नहीं, ऐसा ही भगवान चाहते हैं, भगवान की इच्छा है, जो भगवान चाहते हैं वही नैतिकता है। अगर भगवान इस तरह से आना चाहते हैं तो यही नैतिकता है, क्योंकि वो परम सत्य है, उनकी जो इच्छा है वही नैतिकता है, वही परम सत्य है, वही मॉरलिटी है। बहुत से ऐसे ढोंगी हैं जो शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं परंतु किसी परंपरा से आए हुए गुरु के सानिध्य से ना होने के कारण भगवान की लीलाओं पर आरोप लगाते हैं। कुछ साधु, कुछ बाबा जी क्या करते हैं, वो रास लीला खेलते हैं और जो यंग गर्ल्स होती हैं उनको बुलाते हैं कि क्योंकि कृष्ण ने ऐसा किया है तो हम भी कृष्ण के प्रतिनिधि हैं तो हम भी ऐसा करते हैं, इसलिए वो अब वो जनता को ठगते हैं। वास्तव में शास्त्र को बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, जो शुद्ध प्रमाणिक गुरु होते हैं, उनके द्वारा ही समझना चाहिए। तभी तो भगवान ने कहा तद विज्ञानार्थम सो गुरुम एव अधिकच्छति। ये परम आवश्यक है कि प्रामाणिक गुरु परंपरा से आए हुए व्यक्ति से ही हमें शास्त्र को समझना होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अपराध कर बैठेंगे, बल्कि अध्ययन करेंगे अपनी बुद्धि के अनुसार तो उसी अध्ययन से ही हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए जब किसी शुद्ध गुरु से हम श्रवण करते हैं तो हमें पता चलता है, कितना सरल और सिंपल तरीके से बताते हैं कि पराशर मुनि कितने बड़े महात्मा थे। पराशर मुनि वो थे जिन्होंने विष्णु पुराण की रचना की थी। इतनी महत्वपूर्ण सहायता है विष्णु पुराण। और श्रील प्रभुपाद जी पराशर मुनि के अक्सर श्लोक जो है उनके कोट करते हैं, जैसे ऐश्वर्यश्च समग्रश्च वीर्यश्च यशश्रय ज्ञान वैराग्यश्च एव शरणं भग इति कणा। ये बहुत ही विख्यात श्लोक है। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने इसके विषय में बताया है। और श्री पराशर मुनि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथोरिटी, वो बहुत बड़ी ऑथोरिटी है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी इसके अतिरिक्त भी अलग अलग जगहों पर उनके श्लोक दोहराते हैं। तो वास्तव में भक्तों, हमें भगवान की लीला पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो करते हैं वही परम नैतिकता है, वही मॉरलिटी है, उसमें कभी कोई अपराध नहीं होता है। क्योंकि भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जो भी कार्य हैं, मेरा जो जन्म है वो सब दिव्य होता है। इसलिए कोई भी साधारण व्यक्ति जो है वो भगवान नहीं बन सकता। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर आप जो ऐसे ढोंगी लोग होते हैं जो रासलीलाएं खेलते हैं और वो कहते हैं कि हम भी भगवान के प्रतिनिधि हैं तो हम ऐसा कर रहे हैं, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते पहले उनको बोलो कि भगवान ने रासलीला खेलने से पहले 7 दिन तक गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया था। आप भी पहले ऐसा करो, 7 दिन तक वो गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठाओ। और छोटे से भगवान जो 6 दिन के थे, पूतना को मारा, अगासुर को मारा और कालिया दहन किया, इतने सारे राक्षसों को मारा, भगवान ने अपने मुख में यशोदा मैया को पूरा संसार दिखाया। आप पहले वो करो, प्रूफ करो कि आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हो, उसके बाद जाओ रासलीला खेलने के लिए। लेकिन ये सब नहीं कर सकते। बस जो है ना, भगवान जो करते हैं वास्तव में क्या है, शास्त्र कहता है भक्तारम यज्ञ तपसा। इस संसार में जो कुछ भी है वो भगवान के भोगने के लिए, भगवान की इच्छा हो रही है किसी चीज से संतुष्ट होने के लिए, तो भगवान को अधिकार है क्योंकि वो सब कुछ भगवान का है। तो सबसे बड़ी नैतिकता, सबसे बड़ी मॉरलिटी क्या है कि किसी व्यक्ति या वस्तु से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, परंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि कोई ढोंग करता है कि मैं भगवान के प्रतिनिधि हूँ और मैं भगवान की तरह कार्य कर रहा हूँ, ऐसे साधु कभी भी सच्चे साधु नहीं हो सकते। जैसे चैतन्य महाप्रभु, वो कृष्ण को भी जानते थे, वेदव्यास जी के जन्म को भी जानते थे, परंतु उन्होंने अपने जीवन में संन्यास लिया था और सारे जीवन संन्यास का पालन किया। हमारे समस्त आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, शीला प्रभुपाद जी ने सबने अपने गुरु की भूमिका को निभाया और वैसे ही किया जैसे कि आचार्यों के नक्शे, जैसे जो परिवेचक आचार्य उनके परंपरा के जो दूसरे आचार्य थे उनके अनुसार ही कार्य किया। दूसरे आचार्यों ने, जैसे श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, यानी सब अपने अपने गुरु के आदेशों के अनुसार और उनके पदचिन्हों का अनुगमन करते हुए आगे चले। परंतु यदि आज कोई गुरु ये कह रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हें नहीं करना है, मैं तो भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मैं रास खेल सकता हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, तुमको क्या करना है, जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो, ऐसा नहीं। आचार्य का क्या मतलब होता है? आचार्य का मतलब होता है जो अपने आचरण से करके दिखाए, उस जो आचार्य है उसका जीवन उसके शब्दों की तरह पवित्र होना चाहिए और आचार्य के शब्द कृष्ण के शब्द होने चाहिए, जो भगवान ने कहे हैं वही शब्द होने चाहिए लेकिन उसका आचरण उन्हीं शब्दों के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, फिर पराशर मुनि ने ये कार्य किया अगर, तो ये तो है ना भगवान के शब्दों के अनुसार नहीं है। तो वास्तव में क्या होता है, जो व्यक्ति भगवान के साथ उनकी लीला में सहयोग करते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं, यानी कि वो अलग होते हैं, साधारण व्यक्तियों की तरह नहीं होते वो। जैसे कहते हैं ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन रूल्स बट रूल कैन नॉट बिकम एक्सेप्शंस, यानी अपवाद नियम में हमेशा होते हैं परंतु नियम अपवाद नहीं बन सकते। ये जो एक्सेप्शनल होते हैं, जो विशेष व्यक्ति होते हैं, जैसे कोई विशेष व्यक्ति या कोई ऐसी विशेष बात जो आम जनरल लोगों से हटकर होती है, उसको एक्सेप्शनल कहते हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि रूल्स और रेगुलेशन हर जगह लागू नहीं होते, कोई कोई केस ऐसा होता है जो हम कहते हैं एक्सेप्शनल को ये केस है। क्यों, यहाँ पर भी यही है कि अब भगवान को आना था, ये सब पराशर मुनि, सत्यवती, ये सब भगवान की लीला में सहयोग दे रहे हैं, भगवान ने ऐसे आना निश्चित किया है। तो जो कार्य भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए होता है, जो कार्य भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए होता है, उसमें कभी कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी पवित्र नहीं है। हमको केवल भौतिकता ही दिखती है हर जगह पर। भगवान के कर्म तो दिव्य हैं, अब लेकिन हमारे पास दिव्य बुद्धि नहीं है ना, इसलिए हम इसको समझ नहीं सकते। इसलिए भगवान की लीला जो है, भगवान के कार्यकलाप जो है, भगवान के आने का जो कारण होता है या भगवान का जो प्राकट्य होता है, उसके विषय में हमको केवल श्रवण करना होता है, जो लिखा होता है एज इट इज उसको बताना होता है, लेकिन उसके उसके लिए हृदय के अंदर आरोप भाव नहीं आना चाहिए। क्योंकि भगवान जो करते हैं, भगवान परम सत्य हैं, और जो अपनी लीला में करते हैं वो भी इटर्नल सत्य होता है, दिव्य होता है, और हमारी बुद्धि ये सब नहीं समझ सकती है। इसलिए लीलाओं के ऊपर हमें संदेह नहीं होनी चाहिए। और श्री प्रभुपाल जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ऋषि की माता सत्यवती वसु की पुत्री थी और उनके पिता पराशर मुनि थे। व्यास देव के जन्म का यही इतिहास है, तो हमें उसको एज इट इज समझना है कि ये इस तरह से वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ था। और श्री प्रभुपाद ने बोला वो कहाँ हुआ था, किस टाइम पर हुआ था। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक युग तीन कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या काल कहलाता है। व्यास देव उस युग की तृतीय संध्या में उत्पन्न हुए थे। कौन से युग की, जो द्वापर युग था उसकी तृतीय संध्या, यानी कि द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, उसी समय वेद व्यास जी का भी अवतार हुआ था। और इस तरह से यह भगवान का अवतार और साक्षात भगवान परम पुरुष जो पूर्ण कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण है, वो एक साथ ही एक समय में भगवान इस संसार में उत्पन्न हुए थे। आज सुत गोस्वामी ने ऋषियों के प्रश्न के उत्तर देने को प्रारंभ किया और आगे आगे श्रृंखला चलती रहेगी और आगे हमें बताते जाएंगे सुत गोस्वामी। इस परम पुण्यवान और पवित्र कथा को सुनकर हम अपने जीवन को सफल करते रहेंगे। कृपया आप सब साथ रहिएगा और मेरी ये प्रार्थना कीजिएगा कि मैं इस पवित्र ग्रंथ को सुनाने के योग्य बन सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।